एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो सुनने में किसी फिल्मी एडवेंचर से कम नहीं लगती।
हाँ बिल्कुल,
लेकिन ये असल में मानवीय रिश्तों, सपनों और जिंदा रहने की जिद की एक बहुत गहरी कहानी है।
बिल्कुल सही। हम बात कर रहे हैं सोफी एल्मा हर्स्ट की किताब ए मैरिज एट सी, ए ट्रू स्टोरी ऑफ लव, ऑब्सेशन एंड शिपरेक की। ये मॉरिस और मैरिलिन बेली एक अंग्रेज जोड़ा था। उनकी अविश्वसनीय सच्ची कहानी है। वो लोग 1973 में प्रशांत महासागर में, सोचिए, 117 दिन एक छोटी सी लाइफ राफ्ट पर भड़कते रहे।
117 दिन! और ये कहानी आज भी, मतलब, इतनी प्रासंगिक क्यों है? ये सिर्फ एक जहाज डूबने की घटना तो नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सवाल उठाती है कि जब जिंदगी आपको बिल्कुल बिल्कुल किनारे पर ले आती है, तब किसी रिश्ते का असली मतलब क्या होता है?
हाँ, क्या चीज है जो दो लोगों को जोड़े रखती है? उनके लक्ष्य क्या हो जाते हैं? कौन सी भूमिकाएं निभाने लगते हैं वो?
सही, ये सवाल वाकई में गहरे हैं, और इनको समझने के लिए शायद हमें लेखिका सोफी एल्मा हर्स्ट को भी थोड़ा जानना होगा।
हाँ, बताइए उनके बारे में।
वो एक जानी मानी ब्रिटिश पत्रकार हैं। लॉन्ग फॉर्म जर्नलिज्म करती हैं, मतलब गहरी रिसर्च वाली सच्ची कहानियां, किरदारों के अंदर तक जाती हैं, उनकी साइकोलॉजी को समझती हैं।
अच्छा, और इस कहानी के लिए उनका नजरिया क्यों खास है?
खास इसलिए है क्योंकि उन्हें बेली दंपति के जो पर्सनल आर्काइव्स थे ना,
अच्छा,
जैसे
जैसे
उनकी डायरी, उनके खत, लॉग बुक, यहां तक कि उनकी अधूरी लिखी हुई कहानियां भी,
हाँ,
उन सब तक उनकी पहुंच थी।
अरे वाह, तो ये सिर्फ घटना बताना नहीं हुआ फिर?
नहीं, एल्मा हर्स्ट की दिलचस्पी सिर्फ ये जानने में नहीं थी कि वे कैसे बचे, बल्कि ये समझने में थी कि उस पूरे अनुभव ने उन्हें और उनके रिश्ते को कैसे बदल दिया। समुद्र में जाने से पहले क्या था, उन 117 दिनों के दौरान क्या हुआ, और फिर दशकों बाद तक उनके लक्ष्य, उनकी भूमिकाएं, सब कैसे बदलते रहे।
तो किताब की कहानी क्या है, जरा शुरू से बताएं।
तो मॉरिस और मैरिलिन बेली एक आम सा अंग्रेज जोड़ा, 1973 में वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से, मतलब, काफी ऊब चुके थे। खासकर मॉरिस, उनका एक सपना था समुद्र। उनका लक्ष्य था सब कुछ बेच देना है, न्यूजीलैंड जाना है और एक नई आजाद जिंदगी शुरू करनी है।
वाह, बड़ा कदम था ये तो।
हाँ, और इसके लिए उन्होंने सालों लगाए, खुद एक नाव बनाई जिसका नाम था ओरालिन।
अच्छा, खुद बनाई?
जी हाँ,
ये तो जुनून हुआ, उनका बड़ा सपना, उनका लक्ष्य पलायन का।
बिल्कुल, लेकिन फिर प्रशांत महासागर में अपनी मंजिल से अभी काफी दूर थे वो। उनकी नाव एक सोती हुई स्पर्म वेल से टकरा गई।
क्या, वेल से?
हाँ, और कुछ ही मिनटों में नाव डूबने लगी।
ओह, तो सपना वही टूट गया?
वहीं टूट गया। उन्हें जान बचाने के लिए एक छोटी सी हवा वाली राफ्ट ओरालू, उस पर कूदना पड़ा, और सामान बहुत ही थोड़ा सा।
सोचकर ही डर लगता है।
और यहीं से शुरू होती है उनकी वो 117 दिनों की अविश्वसनीय मुश्किल कहानी, भूख, प्यास, शार्क का डर, तूफान। लेकिन एल्महर्स्ट की किताब सिर्फ इस संघर्ष को नहीं दिखाती, वो कहानी को तीन हिस्सों में देखती है। पहला, ये यात्रा शुरू ही क्यों हुई?
अच्छा,
मतलब इंग्लैंड में उनकी जिंदगी कैसी थी, मॉरिस का समुद्र के लिए इतना जुनून क्यों था, और मैरिलिन की इसमें क्या भूमिका थी, उनका शुरुआती लक्ष्य क्या था।
दूसरा हिस्सा?
दूसरा हिस्सा है वो 117 दिन राफ्ट पर। उनकी डायरी और लॉगबुक के आधार पर एल्महर्स्ट दिखाती हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी क्या थी, मतलब वो छोटी छोटी चीजें जो जिंदा रहने के लिए करनी पड़ती ही,
जैसे
हाथों से मछली पकड़ना, बारिश का पानी बचाना। यहां उनका लक्ष्य बस एक ही था, किसी तरह अगला दिन देखना, और उनकी भूमिकाएं भी बस इसी एक लक्ष्य के आसपास सिमट गईं।
समझ रही हूँ। और तीसरा हिस्सा जो आपने कहा अनोखा है?
हाँ, तीसरा हिस्सा है बचाव के बाद क्या हुआ।
ओह,
उन्हें अचानक दुनिया भर पर शोहरत मिल गई, वो हीरो बन गए, उनकी किताब बेस्टसेलर बन गई। लेकिन एल्महर्स्ट ये दिखाती हैं कि इस पूरी पब्लिक इमेज के पीछे की सच्चाई क्या थी। कैसे वो अनुभव का बोझ, वो ट्रॉमा और वो प्रसिद्धि का दबाव, वो जिंदगी भर उन्हें झेलना पड़ा। कैसे उनके लक्ष्य और भूमिकाएं फिर से बदले, इस बार समाज के दबाव में, अपनी यादों के दबाव में।
तो चलिए, कहानी के सफर में थोड़ा और अंदर चलते हैं। शुरुआत करते हैं युद्ध के बाद के ब्रिटेन से।
हाँ, माहौल थोड़ा बंधा बंधाया सा था। मॉरिस, जो प्रिंटिंग का काम करते थे, वो इस जिंदगी से खुश नहीं थे। उनके मन में समुद्र का एक जुनून था, बहुत गहरा। समुद्र उनके लिए जैसे आजादी का प्रतीक था, एक ऐसा लक्ष्य जो उन्हें इस रोजमर्रा की जिंदगी से कहीं दूर ले जाएगा।
और मैरिलिन, वो कैसी थी?
मैरिलिन ज्यादा जमीनी थी, प्रैक्टिकल कह सकते हैं, लेकिन अपने पति के सपने के लिए पूरी तरह समर्पित थी।
अच्छा।
उनकी भूमिका थी मॉरिस के इस बड़े लक्ष्य को, इस सपने को पूरा करने में मदद करना। तो उन्होंने सब कुछ बेच दिया, सालों लगाकर नाव बनाई, समुद्री यात्रा सीखी।
तो यही उनके रिश्ते की डायनामिक्स सेट हो गई थी।
बिल्कुल, मॉरिस का सपना देखना और मैरिलिन का उसे साकार करने में साथ देना। और ये यात्रा सिर्फ समंदर की नहीं थी, उनके इस रिश्ते के संतुलन की भी एक तरह से परीक्षा थी।
शुरू में तो सब ठीक चल रहा होगा।
हाँ, शुरुआत में सब बहुत अच्छा लगा उन्हें। अटलांटिक पार किया, पनामा नहर से गुजरे, प्रशांत महासागर की विशालता में उतरे। उनकी लॉगबुक में उस आजादी और खुशी का जिक्र भी है। लग रहा था कि लक्ष्य पूरा होने वाला है। लेकिन फिर 4 मार्च 1973, वो टक्कर,
वेल वाली।
हाँ, और सब कुछ बिखर गया। शांति, सपना, आजादी, सब खत्म। डूबती नाव, अफरा तफरी। बस कुछ ही मिनटों में उन्हें अपनी वो दुनिया छोड़कर एक छोटी सी राफ्ट पर आना पड़ा, साथ में थोड़ा सा खाना, पानी, कंपास, बस।
वो समुद्र जो आजादी का रास्ता था,
वो अब एक अंतहीन कैद बन गया। लक्ष्य अचानक बदल गया, भागने से बचने तक का सफर शुरू हो गया।
अब आता है कहानी का सबसे मुश्किल हिस्सा, वो 117 दिन।
हाँ, एल्महर्स्ट, मैरिलिन की जो सीक्रेट डायरी थी और मॉरिस की लॉग, उनके जरिए हमें उस रोज की जद्दोजहद में ले जाती हैं।
और ये कोई हीरो वाली कहानी नहीं है जैसा आपने कहा।
बिल्कुल नहीं, ये कहानी है सेफ्टी पिन से मछली पकड़ने के हुक बनाने की।
सोचिए,
प्लास्टिक बैग में बारिश की एक एक बूंद जमा करने की, पकड़े गए कछुओं और चिड़ियों को खाने की, हर दिन बस जिंदा रहने की लड़ाई।
ये सिर्फ शारीरिक लड़ाई तो नहीं रही होगी?
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो छोटी सी राफ्ट उनके रिश्ते की, उनके दिमाग की असली कसौटी बन गई। पागलपन से बचने के लिए उन्होंने एक बहुत सख्त रूटीन बना लिया था।
अच्छा, क्या रूटीन?
उनकी भूमिकाएं और भी साफ हो गईं। मॉरिस जो नाविक थे, वो दिशा देखते, उम्मीद बनाए रखते, लॉग बुक लिखते, उनका फोकस ये था। और मैरिलिन, वो घर संभालती, मछली साफ करना, चीजें संभाल कर रखना, पानी का हिसाब रखना। उनका लक्ष्य था किसी तरह दिमाग को काबू में रखना, रोजमर्रा के कामों में उलझाए रखना।
उनके बीच एक अलग ही तरह की निर्भरता बन गई होगी फिर।
हाँ, एक अजीब सी गहरी सहन निर्भरता जो शायद शब्दों से परे थी। वे एक दूसरे के मन की बात समझने लगे थे, बिना कहे एक दूसरे को सहारा देते थे। लेकिन एल्महर्स्ट ये भी दिखाती हैं कि तनाव भी था, जाहिर है होगा ही। कभी कभी हार मानने का मन करता था उनका, अंदर ही अंदर झुंझलाहट होती थी।
हाँ, स्वाभाविक है।
उनकी वो पुरानी भूमिकाएं, सपने देखने वाला मॉरिस और यथार्थवादी मैरिलिन, वो यहां चरम पर पहुंच गई थी। ये इंसानी हिम्मत की मिसाल तो है, पर साथ ही ये भी दिखाती है कि इंसान कितना नाजुक भी हो सकता है।
लक्ष्य बस एक था, अगला सूरज देखना, किसी भी तरह।
बिल्कुल। फिर 117 दिन बाद 30 जून 1973 को एक कोरियाई मछली पकड़ने वाले जहाज ने उन्हें देख लिया।
ओह, आखिरकार बचाओ।
हाँ, बचाओ, सभ्यता में वापसी। वो बेहद कमजोर थे, सदमे में थे, लेकिन जिंदा थे। और रातों रात वे दुनिया भर में मशहूर हो गए।
हाँ।
ब्रिटिश हौसले और प्यार की मिसाल, ऐसे देखा जाने लगा उन्हें।
और यहीं से कहानी एक और मोड़ लेती है, मिथक बनने का सफर।
हाँ, बिल्कुल। उन्होंने अपनी कहानी पर किताब लिखी, 117 डेज एड्रिफ्ट।
हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में, बेस्ट सेलर थी।
बिल्कुल, और इसने उनकी कहानी का एक हीरो वाला, प्रेरणा देने वाला रूप दुनिया के सामने रखा।
लेकिन एल्महर्स्ट क्या कहती हैं इस बारे में?
एल्महर्स्ट बड़ी बारीकी से दिखाती हैं कि ये जो पब्लिक कहानी थी, वो सच होते हुए भी असलियत की कितनी परतों को छुपा लेती है। वो गंदगी, वो डर, वो उलझी हुई भावनाएं, उनकी एक नई भूमिका तय हो गई थी अब, हीरो सर्वाइवर्स। और उनका नया लक्ष्य बन गया था, शायद अनजाने में ही, इस छवि को बनाए रखना।
तो वो एक तरह की दोहरी जिंदगी जी रहे थे।
हाँ, कह सकते हैं। एक तरफ वे उस भयानक अनुभव के शिकार थे, ट्रॉमा से गुजर रहे थे, दूसरी तरफ दुनिया के लिए हीरो थे। वो अपनी बनाई कहानी के साये में जी रहे थे, जो शायद उनके असल अनुभव से कहीं ज्यादा सीधी और आसान लगती थी।
अब आते हैं उस हिस्से पर जो इस किताब को खास बनाता है, बाद की जिंदगी।
जी, एल्महर्स्ट अगले 30 साल तक उनके जीवन को फॉलो करती हैं। शोहरत धीरे धीरे कम हुई, पैसा आया और गया, लेकिन मॉरिस के मन से समुद्र का जुनून नहीं गया।
क्या मतलब, उस हादसे के बाद भी?
हाँ, उसका लक्ष्य अभी भी वही था, समुद्र। उसने मैरिलिन को फिर से राजी किया एक और नाव बनाने और समंदर में वापस जाने के लिए।
ये तो अविश्वसनीय है,
है ना? ये फैसला एक ही वक्त में हिम्मत वाला भी लगता है और दुखद भी।
हाँ, मतलब क्या ये अपने सपने को फिर से पाने की कोशिश थी, या उस पुराने दर्द को, उस ट्रॉमा को बार बार जीने की एक मजबूरी सी बन गई थी?
सही सवाल है। एल्महर्स्ट यही बताती हैं कि राष्ट्रवाद उनका जीवन कभी कभी सामान्य नहीं हो पाया। एक गहरी बेचैनी थी उनमें। वो रिश्ता जो उस मुश्किल वक्त में गढ़ा गया था, अब उसी अनुभव से जैसे बंधा हुआ महसूस होता था। उनकी भूमिकाएं अब उस अतीत से तय हो रही थी।
और अंत में
किताब के आखिर में मॉरिस की सेहत गिरने और उनकी मृत्यु का जिक्र है, और मैरिलिन के अकेलेपन का, जिन्हें लोग हमेशा सर्वाइवर की पत्नी के तौर पर ही जानते रहे। एल्महर्स्ट का निष्कर्ष यही है कि जहाज का डूबना उनके बचाव के साथ खत्म नहीं हुआ था। वो उनके दिमाग में, उनके रिश्ते में, उनकी बाकी जिंदगी तक चलता रहा। शायद उनका आखिरी लक्ष्य बस उस याद के साथ जीना सीखना ही रह गया था।
ये पूरी कहानी, इससे कई गहरी बातें निकलती हैं। पहली तो ये कि दबाव में, मुश्किल हालात में रिश्ते का असली चेहरा क्या होता है।
बिल्कुल, ये कोई फिल्मी रोमांस नहीं था। ये एक जरूरत पर आधारित बहुत ही प्रैक्टिकल निर्भरता थी जिसने उन्हें जिंदा रखा। जब सब कुछ छिन जाता है तो रिश्ते शायद आपसी बचाव के एक समझौते जैसे बन जाते हैं।
हाँ, जहाँ हर किसी की भूमिका बहुत साफ और जरूरी हो जाती है।
सही।
और दूसरी बात, सपने का आकर्षण और कैसे वो जुनून बन सकता है।
हाँ, मॉरिस का समुद्र का सपना शुरू में आजादी का प्रतीक था, एक बड़ा लक्ष्य, लेकिन वो धीरे धीरे एक ऐसा जुनून बन गया जिसने उनकी पूरी जिंदगी को जैसे अपनी गिरफ्त में ले लिया और आखिरकार उन्हें तबाही की तरफ धकेल दिया।
ये एक चेतावनी की तरह है कि कैसे कभी कभी हमारे लक्ष्य हमें अंधा बना सकते हैं।
बिल्कुल। फिर एक और बात है, जिंदा रहने का मनोविज्ञान और छोटी छोटी चीजों की ताकत।
वो रूटीन वाली बात।
हाँ, कैसे निराशा से लड़ने के लिए दिमागी रणनीतियां काम आती हैं। वो रोजमर्रा के काम, मछली साफ करना, लॉग लिखना, ये मामूली काम ही थे जिन्होंने उन्हें शायद पागल होने से बचाया। उनका लक्ष्य हर दिन बस वो छोटे छोटे काम पूरे करना बन गया था।
ये दिखाता है कि बड़े संकट में भी छोटे लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ा जा सकता है।
सही। और फिर वो बात कि कैसे सर्वाइवल की कहानियां गढ़ी जाती हैं और उनका बोझ क्या होता है।
हाँ, समाज को हीरो चाहिए होते हैं। बेली दंपति उस हीरो वाली भूमिका में फिट हो गए,
लेकिन शायद उसमें फंस भी गए। ये दिखाता है कि असल अनुभव और लोगों को सुनाई जाने वाली कहानी में कितना फर्क हो सकता है। उनकी वो सार्वजनिक भूमिका उनके निजी सच पर शायद हावी हो गई।
और सबसे जरूरी, ट्रॉमा का, गहरे सदमे का कभी न खत्म होने वाला असर।
हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। अक्सर लगता है कि बच गए तो कहानी खत्म, लेकिन ये किताब दिखाती है कि राफ्ट्स पर बिताया वो समय एक ऐसा घाव था जो उनके बाकी जीवन पर असर डालता रहा। उनका अतीत उनके भविष्य के लक्ष्य और भूमिकाएं तय कर रहा था।
और आखिर में वो इंसानी हिम्मत और इंसानी कमजोरी का संतुलन।
हाँ, वे विश्वसनीय रूप से मजबूत थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनकी ट्यूटन, उनकी निराशा, वो भी उतनी ही सच्ची थी।
हम इसे अपने आसपास भी देखते हैं, है ना? लोग मुश्किलों का सामना करते हैं, रिश्तों में दबाव झेलते हैं। कैसे लोग अपनी बाहरी भूमिका समाज में, परिवार में और अपने अंदरूनी संघर्षों के बीच जीते हैं।
बिल्कुल। अक्सर हमारे लक्ष्य तय होते हैं, हमारी भूमिकाएं तय होती हैं, लेकिन हमारा असली संघर्ष तो निजी होता है, अंदरूनी होता है।
इस किताब में सीधे तौर पर शायद यादगार वाक्य न हो, लेकिन कुछ विचार हैं जो बार बार जहन में आते हैं। जैसे एक ये कि उनका जिंदा रहना किसी बहादुरी के कारनामे का नतीजा नहीं था, बल्कि घोर निराशा के सामने किए गए लाखों छोटे मामूली कामों का जोड़ था।
इसका मतलब साफ है, ये कोई एक्शन फिल्म नहीं थी। बचाव किसी एक बड़े हीरो वाले काम से नहीं हुआ, बल्कि रोज की उबाऊ थका देने वाली मेहनत से हुआ। उनकी भूमिकाएं ग्लैमरस नहीं थी, जरूरी थी। उनका लक्ष्य हर पल जीना था, कोई बड़ा कारनामा करना नहीं।
एक और विचार, जहाज का डूबना उनके बचाव पर खत्म नहीं हुआ, ये एक मानसिक अवस्था थी जिसमें वे अपनी बाकी जिंदगी जीते रहे।
ये उस सदमे की गहराई बताता है। वो 117 दिन उनकी पहचान, उनके रिश्ते, उनके भविष्य के लक्ष्यों पर हमेशा के लिए हावी हो गए। एक तरह से वो राफ्ट से कभी उतरे ही नहीं।
और तीसरा, समुद्र मॉरिस का सबसे बड़ा प्यार भी था और सबसे बड़ा दुश्मन भी। मैरिलिन के लिए वो बस वो जगह थी जहां मॉरिस था।
ये उनके रिश्ते के उस बुनियादी असंतुलन को दिखाता है। मॉरिस का लक्ष्य और जुनून समुद्र था, मैरिलिन की भूमिका उस जुनून में उसका साथ निभाने की थी। शायद प्यार की वजह से, वफादारी की वजह से, उनके लक्ष्य अलग थे, भले ही सफर एक था।
ये बातें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारे अपने जीवन में हमारे लक्ष्य क्या हैं, हमारी भूमिकाएं क्या हैं, और मुश्किल वक्त आने पर ये सब कैसे बदल जाता है।
हाँ, और भले ही बेली दंपति का अनुभव बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम था, ये किताब हम सबके लिए कुछ जरूरी सबक देती है। जैसे निजी रिश्तों के बारे में सोचें, ये दिखाती है कि जोड़े मुश्किल वक्त का सामना कैसे करते हैं, चाहे वो बीमारी हो, पैसों की तंगी हो या कोई बड़ा नुकसान।
एक साझा लक्ष्य होना जरूरी है।
हाँ बिल्कुल, लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि कहीं एक का सपना या लक्ष्य दूसरे पर हावी तो नहीं हो रहा। रिश्तों में भूमिकाओं का संतुलन कितना नाजुक हो सकता है, ये कहानी दिखाती है।
बिल्कुल, और दूसरा सबक है मानसिक मजबूती, रेजिलियंस पर, कि दिमागी ताकत की एक कमाल की केस स्टडी है।
हाँ, कैसे घोर चिंता और निराशा में भी रूटीन और छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर मन को संभाला जा सकता है। किसी भी बड़ी चुनौती को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ना ये जिंदगी में कहीं भी काम आ सकता है।
अपना लक्ष्य छोटा रखें और अपनी भूमिका उस छोटे लक्ष्य को पूरा करने पर केंद्रित करें।
बिल्कुल, फिर सदमे और उसके असर को समझना, ये एक अहम सबक है कि गहरे सदमे का असर लंबे समय तक रह सकता है। किसी का बच जाना सिर्फ शुरुआत है, उस अनुभव से उभरना एक अलग, शायद जिंदगी भर चलने वाली यात्रा है।
ये हमें उन लोगों के प्रति ज्यादा हमदर्दी और धीरज रखना सिखाता है जो ऐसे अनुभवों से गुजरे हों।
हाँ, हमें समझना होगा कि अतीत कैसे वर्तमान के लक्ष्यों और भूमिकाओं को प्रभावित करता है।
और आखिर में, हम अपनी और दूसरों की कहानियाँ कैसे बनाते हैं। ये किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम जो कहानियाँ सुनते हैं या खुद अपने बारे में बताते हैं वो कितनी सच्ची होती हैं।
हाँ, किसी भी आसान सी कहानी के पीछे की जटिल सच्चाई को देखने की कोशिश करना, समझना कि कैसे समाज की उम्मीदें, भूमिकाओं और लक्ष्यों को लेकर हमारी कहानियों को शक्ल देती हैं, उन्हें एक रूप देती हैं।
तो शायद ए मैरिज एट सी से सबसे बड़ा सबक यही है कि इंसानी कहानियां सीधी सादी बहादुरी की नहीं होती, वो ज्यादातर उलझी हुई होती हैं, मुश्किल होती हैं और बहुत गहरी होती हैं। हमारे लक्ष्यों की उलझन, हमारी भूमिकाओं का बदलना और इन सबके बीच रिश्तों की कच्ची पक्की सच्चाई।
इस किताब को पढ़ने के बाद पाठक सर्वाइवल के ग्लैमर से परे उसकी थका देने वाली, पीसने वाली सच्चाई और उसके मानसिक बोझ को ज्यादा गहराई से समझ पाते हैं। ये सोच बदलती है कि सर्वाइवल कोई एक जीत का पल है, नहीं, ये एक ऐसी स्थिति हो सकती है जो इंसान की भूमिकाओं और जीवन के लक्ष्यों को हमेशा के लिए बदल दे।
किताब की सबसे स्थायी छाप शायद एक रिश्ते की बहुत ही ईमानदार, बेबाक तस्वीर है। ये दिखाती है कि कैसे निर्भरता, प्यार और वफादारी कभी कभी परेशान करने वाले तरीकों से भी दो लोगों को जोड़े रखती है, खासकर तब जब वे एक मुश्किल साझा लक्ष्य का सामना कर रहे हों।
सही कहा, सोफी अलमहस ने एक जानी पहचानी एडवेंचर कहानी को इंसानी मन और रिश्तों की एक गहरी मनोवैज्ञानिक पड़ताल में बदल दिया है। ये उनकी बड़ी कामयाबी है। बना भी सकते हैं और हमें एक तरह से कैद भी कर सकते हैं अपनी ही बनाई जेल में।
सही कहा, और मुझे मैरिलिन का किरदार बहुत बहुत प्रभावित कर गया। उनका वो शांत धीरज, उनकी व्यावहारिक शक्ति और अपने पति के लक्ष्य के लिए उनकी वो अटूट वफादारी, चाहे उसकी कीमत कुछ भी क्यों न चुकानी पड़ी हो। ये रिश्तों में निभाई जाने वाली भूमिकाओं की जटिलता और अक्सर अनदेखे रह जाने वाले बलिदानों को सामने लाता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।